गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः अनुवाद इस प्रकार से है। इस समय इस संसार में गुणवान वीर्यवान धर्मज्ञ उपकार मानने वाला सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा ये कौन है? ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर्जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। जो भी भक्तों ने मोबाइल फोन लाए हो कृपया उसको आप बाहर निकाल के बंद कर दीजिए ताकि राम कथा में बाधा ना हो। और माताओं को अनुरोध है कृपया अपने छोटे बच्चों को संभाले ताकि वो लेक्चर में डिस्टर्ब ना करें।
पांडवों के अंतिम वंशज जिनका नाम जन्मेजय, जन्मेजय ये परीक्षित महाराज के पुत्र थे और कलयुग का प्रभाव प्रारंभ हो चुका था और कलयुग के प्रभाव के वजह से जन्मेजय उनमें स्वाभाविक भगवान के प्रति रुचि नहीं हो रही थी कलयुग के प्रभाव के वजह से, विशेष रूप से भगवान की कथा के प्रति। तो वैशंपायन इन्होंने चाहा कि वो कैसे जन्मेजय इनको आकर्षित करें भगवान की कथा की ओर, क्योंकि वो देख रहे थे कि ये साधारण वंश से नहीं है, साधारण रक्त नहीं है इनके रगों में। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया परंतु जन्मेजय है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें लगे हुए थे और इससे आकर्षित थे। तो कई बार प्रवक्ता जो होते हैं वो श्रोता को आकर्षित करने के लिए कुछ रहस्यमय बात बोल देते हैं अटेंशन लेने के लिए, उनका पहेली या कोई रहस्यमय बात, समथिंग मिस्टीरियस। तो वार्तालाप करते करते वैशंपायन मुनि इन्होंने जन्मेजय को केवल दो शब्द कहे और ये दो शब्द सुनकर उनका अटेंशन उन्होंने प्राप्त कर लिया। दो शब्द थे वनभंगम गोहरणम, बस इतना ही कहा उन्होंने, वनभंगम और गोहरणम। तुरंत जन्मेजय उनके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या है इसका रहस्य ये दो शब्दों का, और वैशंपायन चुप हो गए उसके पश्चात। तो अब इनके अंदर वो जानने की लालसा बढ़ती गई जन्मेजय के अंदर, तो थोड़े आतुर किया उनको पहले नहीं बताकर, और फिर जब वो भूरी भूरी तरीके से आतुर हो चुके थे फिर वैशंपायन उन्होंने कहा गोहरणम। महाभारत के विषय में जब विराट नगर में कुरुसेना आकर उन्होंने विराट महाराज विराट इनके गौओं को हर लिया, तो महाभारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने गोहरणम ये कहा। तो अब इन्होंने पूछा वनभंगम क्या है ये, तो वनभंगम समझे आप लोग, वनभंगम क्या है क्या रामायण में? आप लोगों का ध्यान आकर्षित करो तो वन भंगम मतलब हनुमान जी ने जो अशोक वाटिका को विध्वंस किया उस वन को, उससे उल्लेख है वन भंगम। तो बहुत ऑब्वियस नहीं उन्होंने किया कि वन भंगम मतलब क्या, जानबूझकर वैशंपायन उसको रहस्यमय रख रहे थे। तो जब जन्मेजय वो और जानना चाहते थे कि क्या है ये गोहरणम और वन भंगम, तब फिर वैशंपायन सुनाना शुरू किए। तो कलयुग का लक्षण है कि प्रवक्ता को, श्रोता को कृष्ण कथा से आकर्षित बनाए रखने के लिए बहुत पैंतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जैसे कि वैशंपायन इन्होंने किया। तो अब उन्होंने महाभारत सुनाई, महाभारत के पश्चात फिर जब रामायण उन्होंने जन्मेजय इनको सुनाई, तो रामायण में प्रभु श्री राम का चरित्र सुनकर जन्मेजय वो इतने आकर्षित हो गए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष उसे अपने जीवन से बहिष्कृत किया उन्होंने। और उनका आकर्षण विशेष रूप से प्रभु श्री राम के चरित्र के प्रति हुआ। तो ये है आज के हमारे प्रवचन की पार्श्वभूमि, प्रभु श्री राम का चरित्र, जो कि हमने केवल बालकांड का ये शुरुआत का श्लोक लिया है। ऐसे कितने सारे श्लोक हैं जिसके अंदर प्रभु श्री राम के कुछ 16 गुण बताए गए हैं। आज तो हम ये श्लोक से केवल प्रभु श्री राम के 7 गुण लेने वाले हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे प्रमुख तौर पर। तो रामायण के जो इतने विद्वत टीकाकार हुए हैं उन्होंने प्रभु श्री राम के ये सारे गुणों एक एक कर कर उसका विश्लेषण कर कर कैसे उनकी लीलाओं से वो संबंधित हैं, उनके वो गुण क्या होता है हमारे जीवन में। हमारा नाम एक होता है, हमारे कर्म कुछ और होते हैं। नाम कुछ और है, विचार कुछ और है, वाणी कुछ और है, कर्म कुछ और है। किसी में भी तालमेल नहीं है। परंतु प्रभु श्री राम जैसे चरित्रवान व्यक्ति का तालमेल सब एक समान है। उनका चरित्र, उनका नाम, उनके गुण, उनके कर्म, उनके विचार, उनकी वाणी, सब कुछ। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है कि महात्मा कौन है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्न्यत वचस्न्यत कर्मण्यत दुरात्मना। महात्मा वो है मन, वाणी और कर्म उसका तालमेल हो, कोहेरेंट। और दुरात्मा कौन है, ठीक इसका विपरीत, जो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, वो है दुरात्मा। तो यहां पर सबसे पहले प्रभु श्री राम को गुणवान कहा गया है। फिर गुणवान से संबंधित ये एक बहुत ही विशेष गुण प्रभु श्री राम का, सौशील्य, वीर्यवान, धर्मज्ञ, सत्यवान, दृढ़व्रत और कृतज्ञ। तो प्रभु श्री राम ने अपने पूरे अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका निभाई है। भगवान श्री कृष्ण वो कौन है? लीला पुरुषोत्तम। चैतन्य महाप्रभु हैं औदार्य पुरुषोत्तम, और प्रभु श्री राम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो गुणवान, गुणवान का अर्थ क्या होता है कि वो व्यक्ति जो कि सारे गुणों से फलीभूत हो, उसके अंदर कुछ मात्रा में गुण नहीं है। गुणवान का अर्थ होता है कि जितने गुण हैं, हम जितने गुणों से आकर्षित होते हैं इस संसार में, उन सभी गुणों के जो खान हैं, गुणवान वो हैं। तो अब देखिए, साधारणतः इस भौतिक संसार में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक गुण को कुछ मात्रा में हासिल कर लेता है, वो भी भगवान की कृपा से, फिर से दोहराएं, कुछ एक गुण को कुछ मात्रा में भगवान की कृपा से हासिल कर लेता है, तो अहंकार, उसका अभिमान इतना बढ़ जाता है कि मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं, मुझ जैसा यशस्वी कोई नहीं, मुझ जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मुझ जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। और भगवान के लिए ऐसा अभिमानी व्यक्ति बहुत बड़ा कॉमेडियन होता है, विदूषक, बहुत बड़ा विदूषक होता है। तो गुणवान के साथ इस संसार में क्या उसके साथ लगा हुआ है? अहंकार। परंतु प्रभु श्री राम के विषय में कहा गया है कि वो न केवल एक गुण नहीं, अनंत समस्त गुणों को जो धारण किए हुए हैं और जो स्रोत हैं उनके, न केवल वो धारण किए हुए हैं, बल्कि जो भी यहां पर हम लोग थोड़ा बहुत उनके गुणों कुछ प्रतिशत में हम लिए हैं, वो स्रोत हैं उन गुणों के। तो ये भगवान श्री राम गुणवान जो हैं, उसके साथ साथ सौशील्य, सौशील्य का अर्थ क्या होता है? जैसे गुणवान हमने कहा स्किलफुल, दक्ष, कलात्मक, सारी कलाओं से परिपूर्ण। और सौशील्य का अर्थ होता है एक्सेसिबल। सुलभता से जो प्राप्त हो पाए, सौशील्य उसका अर्थ है, एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल। अब देखिए, किसी व्यक्ति में ये दोनों गुण एक साथ होना, गुणवान और सौशील्य, ये एक साथ होना इस भौतिक संसार में असंभव है। जैसे कि जो सेलिब्रिटीज हैं, सो कॉल्ड तथाकथित, तो एक उनके सेलिब्रिटी होने का गुण क्या है? सौशील्य नहीं होना चाहिए, है ना? अगर वो आम जनता कभी भी उनसे मिल सकती है, देख सकती है, तो फिर उनके अंदर क्या गुण रहेगा? परंतु उनसे मिल पाना, जो भी उनके दर्शन कर पाना, बहुत दुर्लभ यदि हो जाए, तो हाँ, वो व्यक्ति गुणवान है। श्रील प्रभुपाद अगर हम देखें उनके जीवन में, तो प्रभुपाद इतने बड़े वैष्णव, उच्चिष्ट कोटि के वैष्णव श्रील प्रभुपाद, और वो एक्सेसिबल किन के लिए हो गए थे? ये ऐसे हिप्पी हर प्रकार का कुकर्म करते हुए ये जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, इनके लिए श्रील प्रभुपाद मुकुंद महाराज वो अपने एक मेमोरीज में कहते हैं कि वो जब नए नए प्रभुपाद से मिले थे तो कुछ उन्हें एटिकेट नहीं था कि सन्यासी कौन होता है, सन्यासी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और ये लोगों की उम्र क्या थी उस समय? 19-20 साल ये उम्र इनकी थी, प्रभुपाद 70 वर्ष के। केवल अगर उम्र का लिहाज किया होता तो भी एटिकेट फॉलो किया होता इन्होंने। एक तो उम्र में इतने वरिष्ठ श्रील प्रभुपाद, फिर एक ऐसे आचार्य जो कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति की क्रांति फैलाने वाले, ये ऐसा शुद्ध जीवन जिन्होंने अपने बचपन से जिया, इनके साथ किस प्रकार का आदान प्रदान इनसे होता था, इन हिप्पियों से। मुकुंद महाराज कहते हैं कि एक कार्यक्रम के लिए श्रील प्रभुपाद को ले जा रहे थे तो श्याम सुंदर प्रभु ड्राइव कर रहे थे, प्रभुपाद बगल में बैठे हुए थे, मुकुंद महाराज पीछे थे। उस समय माइकल उनका नाम था, नए नए ये आए थे, तो ये पीछे वाली सीट पर बैठे हुए सेब खा रहे थे। और वो दिन प्रभुपाद इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन भर प्रभुपाद ने एक अन्न का दाना नहीं खाया था। तो ये खाते हुए इनको लगा कि मैं इनको भी पूछ लेता हूं, ये जो इंडिया से स्वामी जी आए हैं, अगर ये कुछ खाना पसंद करेंगे तो इन्होंने प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? तो प्रभुपाद को भूख लगी थी, प्रभुपाद ने कहा ये व्हाट यू हैव, तो खाया हुआ जो एप्पल वो दे दिया, यू कैन हैव दिस। खाया हुआ उनका एप्पल प्रभुपाद को दे दिया और प्रभुपाद यहां पर कौन सा गुण हम ले रहे हैं? सौशील्य। प्रभुपाद ने उनके मुंह से लगाया हुआ वो जूठा एप्पल प्रभुपाद खाए। जैसे प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे भेर, सौशील्य। यहां तक कि प्रभुपाद कहते थे जब अमेरिका पहुंचे ही थे तो वो आगरा के एक उनके परिचित व्यक्ति का लड़का गोपाल अग्रवाल, जो अमेरिका में सेटल था, जिसने एक अमेरिकन स्त्री से विवाह किया था, सैली अग्रवाल उसका नाम हो गया था, तो प्रभुपाद उनके घर में रुके हुए थे सबसे पहले। तो ये अमेरिकन औरत, और इसे कुछ पता नहीं कि ये सन्यासी कौन होता है, सन्यासी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो फ्रिज के अंदर, प्रभुपाद कहते थे कि उनके फ्रिज के अंदर प्रभुपाद जो अपने खिचड़ी का सामान रखते थे बनाने के लिए, उसी फ्रिज में मांस पड़ा रहता था, उसी फ्रिज में अंडे पड़े रहते थे। प्रभुपाद वो सब कुछ सहन किए। और वो सैली, हाल ही में ये हुआ था, एक रीयूनियन हुआ था प्रभुपाद कमिंग टू अमेरिका का, तो उसमें इसको बुलाया था, तो ये अब बहुत वृद्ध हो चुकी, तो ये वो रिकलेक्ट कर रही थी ये सैली अग्रवाल कि मुझे तो कोई अंदाजा नहीं था कि इंडियन कोई सन्यासी का स्टैंडर्ड क्या होता है, शुद्धता कैसे बरतनी चाहिए उनके साथ, कुछ मुझे पता नहीं था। परंतु उन्होंने कभी उस सैली को नहीं कहा कि तुम कम से कम फ्रिज से मांस बाहर निकालो, कभी शिकायत नहीं करी प्रभुपाद ने हाँ? अब देखो, कई बार कई जो वृद्ध हो जाते हैं, अधिकांश उनका दिन शिकायतों में जाता है ना। थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो शिकायत ज्यादा कि अरे नल खुला रख दिया, बत्ती नहीं बुझाई, पंखा चल रहा है, अकल नहीं है ये। यहां श्रील प्रभुपाद, उन्हें कभी उनकी शुद्धता का गर्व नहीं था, अपनी शुद्धता के ऊपर कभी ऐसे अहंकार उनका नहीं था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, और श्रील प्रभुपाद के अंदर के गुण, वैष्णव गुण उनके अंदर, आगे चल के फिर उनके शिष्यों को पता चला कि अरे भाई हम किनसे डील कर रहे हैं, ये तो भगवत धाम से आए हुए भगवान के पार्षद हैं, ये नित्यानंद प्रभु द्वारा भेजे गए सेनापति हैं, और जूठा एप्पल दे रहे हैं, फ्रिज के अंदर मांस रखा हुआ है। तो प्रभु श्री राम की ये विशेषता, गुणवान के साथ साथ सौशील्य। तो यदि हम कुछ प्रसंग लें इस गुण को उनके लेते हुए, तो सबसे पहले निषाद राज गुहा। अब देखिए, प्रभु श्री राम जो कि सूर्य वंश में, उनका वंश देखिए, सूर्य वंश के जो सम्राट बनने वाले थे, बनने वाले क्या थे कि प्रभु श्री राम सूर्य वंश में पैदा हुए तो उन्होंने दया करी सूर्य वंश के ऊपर, यह समझना चाहिए। उल्टा इस प्रकार से कहेंगे कि जो वंश में भगवान पैदा होते हैं उस वंश के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। तो यदि भौतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये गुहा था कौन? एक जंगली जाति का निषाद गुहा। नाविक होते हैं ना, नाविक, केवट भी इनको कहा गया है। तो जो इनके विषय में वो लीला है कि प्रभु श्री राम ने इस गुहा के ऊपर क्या कृपा करी। एक्सेसिबल ये गुहा, हालांकि प्रभु श्री राम का ये अनन्य भक्त था, परंतु प्रभु श्री राम का सानिध्य कभी इतने निकट से प्राप्त इसे नहीं हुआ था। और यहां भगवान स्वयं पैदल चलते हुए गुहा के राज्य में, जो भी उसका राज्य था, गुहा के राज्य में उन्होंने प्रवेश किया। उतना ही नहीं, गुहा की सेवा को स्वीकार किया। इससे बड़ी संधि, सुवर्ण संधि किसी जीव के लिए क्या हो सकती है कि भगवान चलकर आए पैदल और सेवा स्वीकार करें। यहां पर तो हम मंदिर में चलकर आते हैं भगवान को सेवा देने के लिए, पता नहीं वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। तो यहां पर इसके अंदर, गुहा के अंदर भगवान ने क्या देखा? भगवान ये दर्शा रहे थे कौन सा गुण? गुणवान के साथ साथ सौशील्यता। और अब देखिए, वो भगवान जो हम सबको भवसागर पार करा सकते हैं, उनका एक नाम, प्रभु श्री राम का एक नाम बद्ध जीवों को भवसागर पार करा सकता है, वो ये केवट के समक्ष हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि मुझे गंगा पार कराओ। कौन सी है ये गंगा? वही जो उनके चरण कमलों से निकली है। वो जो पूरे भवसागर को पार करा सकते हैं हम सबको, वो केवट के आगे विनती कर रहे हैं कि मुझे गंगा पार कराओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें उस तट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। हम लोग बचपन में रामचरितमानस से गाते थे। तो केवट को जब भगवान कहे कि तुम्हारी नाव निकालो और मुझे लक्ष्मण और सीता को गंगा पार कराओ, तो केवट देखो कितना चतुर था। वो उसने कहा, हाल ही में मुझे समाचार प्राप्त हुआ है कि ये आपके जो चरण कमल हैं बहुत डेंजरस हैं। तो प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें उस तट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैंने हाल ही में सुना है कि आपने आपके चरण कमल एक पत्थर पर रखे और उस पत्थर को नारी में परिवर्तित कर दिया, अहिल्या। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो उसने कहा पहले से एक नारी तो है मेरी बीवी, उसे संभालते संभालते दिन रात एक हो रहा है मेरा। आपके चरणों को यदि आप पत्थर को नारी में परिवर्तित कर सकते हो तो ये तो लकड़ी की नाव है मेरी, ये आपके चरण मेरी नाव को स्पर्श करेंगे एक और नारी, आप तो चले जाओगे आपकी नारी के साथ, फिर मैं दो दो नारियों को कैसे संभालूंगा। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो इसने युक्ति क्या निकाली, प्रभु श्री राम कंफ्यूज हो गए अभी। अभी वो एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं तो प्रभु श्री राम कंफ्यूज हो गए कि अब मैं करूं क्या। ये बोल रहा है वो तो सच बात है, झूठ थोड़ी कहा उसने केवट ने, कि अभी अभी हाल ही का जो लेटेस्ट पास टाइम उनका अहिल्या उद्धार का वो कर आए हैं। तो केवट ने कंडीशन रख दिया। तो प्रभु श्री राम पूछते हैं तो फिर भाई क्या इसका समाधान कीजिए समस्या का, अब जाना तो है हमको गंगा के पार। अब ऐसा नहीं कि भगवान केवट से कहे कि अरे भाई तू नहीं लेके जा रहा है, क्रोध किए उसके ऊपर या जोर जबरदस्ती किए। इतने नम्र भगवान सौशल्य कि वो केवट से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम इसका समाधान। तो केवट जो उसने पहले से योजना बना रखी थी, उसे क्या चाहिए था, चरणामृत। तो उसने कहा इस समस्या का समाधान है, सबसे पहले मुझे तसल्ली आप दिला दो कि आपके चरण कमलों पे एक भी धूली का कण न हो, क्योंकि आपके चरण कमल से वो जो धूली के कण चिपक जाते हैं वो और भी डेंजरस होते हैं। तो केवट की ये जो मासूमियत देखी किसने, प्रभु श्री राम ने, तो उन्होंने केवट को कहा ठीक है, एक्सेसिबल, अपने चरण दे दिए साफ करने के लिए। डायरेक्टली केवट प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा और चरण धोकर उसने अपने पूरे परिवार को बुला लिया। चरण धोकर वो चरणामृत जब चरण धो रहा था, चरण धोते धोते वो सीता मैया की ओर देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सोचने लगे, आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि ये विचित्र तरीके से सीता की ओर क्यों मुस्कुरा रहा है। और उसने एक बार पहली दफा चरण धोए प्रभु श्री राम के, पूरा चरणामृत अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, लक्ष्मण तक को दिया, परंतु सीता को नहीं दिया। और विचित्र तरीके से मुस्कुरा रहा है सीता को देख के। फिर सेकेंड टाइम अब रामचंद्र जी बोले, हो गया आप चलें ना, पता नहीं कुछ रह गया होगा, वापस रीचेक। तो दूसरी बार फिर से केवट धोने लगा चरण, और फिर से सीता मैया की ओर मुस्कुराते हुए चरण धो रहा है, और वो चरणामृत को सीता देवी के अलावा बाकी सबको दे रहा है। तो इसके पीछे इसका एक इतिहास है कि ये केवट, ये पहले एक कछुआ था, विरजा नदी में एक कछुआ था ये। तो एक दफा ये कछुआ भगवान श्री नारायण के चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए उस नदी से अपना मुंह बाहर निकाल रहा था, तब लक्ष्मी देवी ने इसे नीचे किया था। ए, कहां मुंह मार रहा है। तो लक्ष्मी देवी ने इसे थोड़ा सा झटका दिया था नीचे फिर से, तो अंदर उसके वो था, मैं दिखाऊंगा अभी। तो फिर ये जब केवट के रूप में आया, वही लक्ष्मी सीता देवी के रूप में आई, तो वो याद दिला रहा था, याद है हाँ? अब देखो, अब मैं नहीं दूंगा। तो ये केवट का आदान प्रदान चल रहा था। तो प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण, इनको अपनी नाव में बिठाकर केवट निकला। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। समझ रहे हैं ना आप लोग, मराठी में नहीं है ये थोड़ा उत्तर भारत के हिंदी में है, तो इसलिए। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु कहे नाव लो उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। नाव की जो उतराई होती है, मतलब किराया, तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि नाव का किराया तुम ले लो मुझसे। तो केवट कहता है नहीं रघुराई। प्रभु बोले नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। समझ गए? तो क्या उसने उतराई मांगी? हमको भी केवट के पदचिन्हों पर चलते हुए भगवान से वही उतराई मांगनी चाहिए। पहले तो केवट की तरह योग्य बनना है। हालांकि योग्य नहीं भी है तो प्रभु श्री राम कौन है? सौशील्य है, गुणवान और सौशील्य। तो केवट कहता है कि मुझे एक ही उतराई चाहिए, जैसे मैंने आपको पार करवाया यहां पर गंगा पे, आप भव सागर से मुझे पार कराइए। ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भगवान कहते हैं। तो देखिए, ये गुहा जो कि एक जंगली जाति का ये व्यक्ति, भगवान एक्सेसिबल इसके लिए। जटायु यदि बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो जटायु एक वृद्ध गिद्ध। पिछली बार हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि गिद्ध पक्षियों में बहुत सुंदर दिखने वाला पक्षी नहीं है, ये वल्चर, और ये भी वृद्ध। और ऐसा नहीं कि प्रभु श्री राम के मिशन में ये बहुत ही प्रोडक्टिव रहे थे, ही वॉज अ फेलियर. परंतु प्रभु श्री राम ने जो जटायु के साथ आदान प्रदान किया वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. हम एंड में कृतज्ञता का भाव जो उन्होंने व्यक्त किया जटायु की ओर उसकी चर्चा करेंगे. तो भौतिक रूप से देखा जाए यहां पर हम इसलिए उनके आगे जो सामाजिक रूप से भौतिक रूप से वो कौन सी स्थिति में थे और भगवान कैसे एक्सेसिबल हुए इसके पश्चात सुग्रीव. तो सुग्रीव जो कि एक बंदर, अभी देखिए सबसे पहले एक जंगली जाति वाला मनुष्य, उसके पश्चात एक गिद्ध, तीसरा एग्जाम्पल है एक बंदर. और वो भी कौन सा बंदर, कई बार मदारी के जो बंदर होते हैं वो वफादार होते हैं मदारी से. मदारी जानते हैं ना, जमुरे वाला. तो ये बंदर सुग्रीव की प्रभु श्री राम ने सहायता की, सुग्रीव को किष्किंधा दिया, सुग्रीव को सुग्रीव की पत्नी लौटाई और एक एक्स्ट्रा पत्नी भी दे दी वाली की. इतना सब कुछ किया सुग्रीव ने प्रभु श्री राम के साथ. वो प्रॉमिस किया था कि हाँ वो अब सहायता करेगा सीता मैया को खोजने में. सब भूल गया सुग्रीव, सब भूल गया. तो अनट्रस्टवर्दी मंकी, फिर भी प्रभु श्री राम उसे छोड़े नहीं, अपनी कृपा देकर रहे. इसलिए हनुमान जी जो बीच में मीडिएटर थे सुग्रीव और रामचंद्र जी के बीच में, हनुमान जी, तो हनुमान जी सबसे पहले रामचंद्र जी से पूछते हैं कि आप जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, ये सुग्रीव मैं जानता हूं पूरा इसका कच्चा चिट्ठा, ये सुग्रीव की सहायता क्यों ले रहे हैं आप, क्या जरूरत है आपको सुग्रीव की. परंतु रामचंद्र जी सुग्रीव जैसे अविश्वासु बंदर पर भी अपनी कृपा करना चाहते थे. सौशील्य गुणवान के साथ ये उनका बहुत विशेष गुण. वानर सेना क्या थी, जो भी सुग्रीव, अच्छा ठीक है, सुग्रीव को मना लिया, उनके साथ पार्टनरशिप सुग्रीव की, तो देने के लिए फिर भी सुग्रीव के पास था क्या ले दे के वानर सेना. और किसके अगेंस्ट युद्ध करना है, सबसे हाईटेक सोफिस्टिकेटेड आर्मी त्रेता युग की, रावण की. रावण के हाईटेक सोफिस्टिकेटेड आर्मी के अगेंस्ट रामचंद्र जी को मिला क्या, अनट्रेन्ड मंकीज. कोई इनको ट्रेनिंग भी नहीं मिली हुई थी कि कैसे युद्ध करना है, क्या करना है, नहीं. बस उनको एक चीज उनके मन में थी कि हमें नहीं पता रावण की सेना के साथ युद्ध कैसे कुशलता से लड़ा जाए, हमें केवल यह पता है कि राम हमारे साथ है. यह उनका दृढ़ विश्वास प्रभु श्री राम के ऊपर. परंतु उनका दृढ़ विश्वास राम के ऊपर, परंतु राम भी तो इतना फेथ इनके ऊपर रखे थे कि ये वानर सेना, ये लोग पुल बनाएंगे, ये लोग सेतु बनाएंगे, ये लोग मेरे साथ जाएंगे. कोई जरूरत नहीं थी सौशल्य. और फिर वो गिलहरी. अब वो गिलहरी सोचो कि इतने बड़े ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, एक नगण्य सा जीव, एक गिलहरी. हम लोग भी मनुष्य, कितना गिलहरी के ऊपर गौर करते हैं, कभी गिलहरी को देखते हैं. और यहां पर वो गिलहरी के अंदर शक्ति क्या थी वो सेतु बांधने में, अगर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कोई अगर प्रोजेक्ट लीडर है, अगर रामचंद्र जी वो सेतु के प्रोजेक्ट लीडर, तो प्रोजेक्ट लीडर क्या देखता है, कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, उनको टाइम देता है ना प्रोजेक्ट लीडर, यहां पर गिलहरी, क्या कंट्रीब्यूशन था उसको, वो रेती के दाने, बस ये उनका कंट्रीब्यूशन था। और हनुमान जी वो इतने बड़े बड़े वो पर्वत फेंक रहे थे हनुमान जी, लेकिन वो गिलहरी के साथ थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं किए, तो रामचंद्र जी हनुमान जी को ठीक करते हुए गिलहरी को अपने गोद में लिए और गिलहरी को अपना वो पूरा संग दे रहे हैं, पुचकार रहे हैं। अभी देखो, आप इमेजिन करो वो सिचुएशन कि किसी पति की पत्नी को किडनैप किया हुआ है, एक तो वो टेंशन कि कितने महीने हो गए, ये सारे टेंशन में एक गिलहरी को इतना समय देना, इतना अटेंशन देना, ये कौन कर सकता है? केवल वही कर सकता है जिसके अंदर सौशील्य है, वो है प्रभु श्री राम। और फिर शबरी, ये शबरी जैसे कि गुहा, वैसे ये शबरी भी एक भिलनी, जंगली जाति की ये अनपढ़ गंवार स्त्री, और इसे मिलने के लिए, इसे कृपा देने के लिए, इसके जूठे भेर खाने के लिए प्रभु श्री राम मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लक्ष्मण वो प्रभु श्री राम के ऐसे आदान प्रदान से कंफ्यूज हो रहे थे कि ये भाई ये क्या जरूरत है शबरी, और वो भी जूठे खिला रही, क्या जरूरत है आपको ये सब करने की, क्योंकि लक्ष्मण जानते हैं कौन है ये, बाकी कोई जाने या ना जाने, लक्ष्मण जानते हैं कि ये कौन है। तो शबरी, अब देखो शबरी जो है उसको मातंग ऋषि ने कह दिया था, उनके गुरु महाराज ने कह दिया था कि तू यहां पर ही मेरे आश्रम में रह, और कब, त्रेता युग में प्रभु श्री राम आएंगे तो उनकी सेवा करना, तो ये रुकी हुई थी।